कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो अंगश्यामलिम छटाभिरभितो मंदे प्रतिन्दिवरम् जगदंजागुडरोच संविदधतम पट्टंबरस्य वृंदारण्य निवासिनम हृदि लसत् दामाभिरामोदरम राधा स्कंद निवेशित जलभुजम ध्यायेम दाम तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे तंग नयमाम चरणम।
आज सबसे पहले हम लोगों की यात्री धीर समीर गए। यहाँ की कथा वहां पर बतलाया गया। ये बंशीबट के समीप है। यहाँ गोपियों का कृष्ण के साथ रास देखकर हवा भी शमीर भी बंद हो गई। वो धीर होकर के चले धीरे धीरे, इसलिए इसका नाम धीर समीर पड़ा। ये धीर समीर का कुंज नित्यानंद प्रभु के ससुर जानमा वसुधा के पिता सूर्यदास सर्किल के छोटे भाई गौरीदास पंडित के द्वारा स्थापित हुआ ये कुंज। गौरीदास पंडित महाप्रभु के परिकरों में एक हैं और जीवन के शेष दिन में यही आकर उन्होंने भजन किया था। धीर समीरे जमुना तीरे बसति बने बनमाली गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। गीत गोविंद में भी जिस कुंज का उल्लेख किया गया है यही केली बट धीर समीर है। यह भी शायद वैष्णव ने बतलाया बक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के परिकर हैं। वे कृष्ण विरह में इतने आतुर हो गए कि लौकिक मनुष्यों के लिए मानो उन्होंने देह का त्याग कर दिया। लोगों ने देखा विरह में उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात उनके शिष्य गोपाल गुरु लीला में प्रवेश पा गए अपरकट लीला में और उनके शिष्य ध्यानचंद गोपाल गुरु जी के रसिक और विद्वान थे। सब तत्वों को जानते हैं गोपाल गुरु से उन्होंने सुना था। वे राधाकांत गौड़ीय मठ राधाकांत मठ में रहते थे और गंभीरा इत्यादि सब उनके देखरेख में चलती थी। हरिदास राधाकांत मठ के अंतर्गत ही हरिदास ठाकुर की भजन कुटी है। जब गोपाल गुरु अप्रकट हो गए बागेश्वर पंडित भी चले गए ध्यानचंद्र जी के समय में राज कर्मचारियों ने कुछ उत्पात आरंभ कर दिया। वे बड़े दुखी हो गए। जगन्नाथ मंदिर से जो कुछ उनको मिलता था वो बंद हो गया। प्रसाद सबके यहां जाता है क्या कौड़ी या क्या दिया जाता है प्रसाद इत्यादि वो सब बंद हो गया। तो उसी समय में किसी वृंदावन के ब्रह्म कि वो कोई भजन करने वाले ने समाचार दिया। बक्रेश्वर पंडित यहाँ पर धीर समीर में भजन कर रहे हैं, तुम इतना क्यों चिंता कर रहे, आ जाओ। ये तो बतलाया था ये सब, ना ना यहाँ पर आज बतलाया था, आज बतलिए थे। तो तुम क्यों व्याकुल हो रहे हो, हमने धीर समीर में उनको भजन करते हुए देखा है, यह सुनकर के पैदल यात्रा करी किए, वृंदावन में आए बहुत दिनों के बाद में, और गया तो देखा तो सचमुच में वो भजन कर रहे थे धीर समीर में। देख करके उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप चलिए जगन्नाथपुरी में। राजा के कर्मचारी लोग बहुत उत्पात कर रहे हैं, हमें रहने नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे जाने की जरूरत नहीं, तुम जाओ, सब तुम्हारे जाते जाते उन लोगों का अत्याचार बंद हो जाएगा और सब समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। तब
इससे पहले आपने बताया था ये गोपाल गुरु ने बक्सर ने गोपाल गुरु जी उसने बताया था बालिका में नीम पेड़ से
जागरूकता व्यवस्था हो जाएगा। हाँ, उन्होंने बतलाया नीम का पेड़ है और गोपाल गुरु ने बतलाया ध्यानचंद को, उसे काट करके और हमारी मूर्ति बनानी और वहां पर रख देना है राधा कांत मठ में और सारी व्यवस्था सब ठीक हो जाएगी। वे उनका ध्यान करते हुए राधा कांत में लौट आए। कर्मचारियों ने अपने कृत्य के लिए पुनः पुनः क्षमा मांगा और उनका पहले के प्रति उनका भाव बहुत बदल गया, वे आदर करने लग गए। वह यही धीर समीर है जहां बक्रेश्वर पंडित दर्शन दिए थे। इसलिए कैसे कैसे महाप्रभु के परिकर हैं और भजन के बल से एक जगह शरीर त्याग दिखला करके और वृंदावन में भजन कर रहे हैं, यह भक्तों के लिए संभव है, इसको असंभव नहीं मानना चाहिए। मान भंजन स्थली, धीर समीर के अंतर्गत ही मान भंजन स्थल है। परिक्रमा मार्ग में इसका ऐसा ग्रंथ में ऐसा वर्णन होता है कि जयदेव गोस्वामी ने अपने प्रसिद्ध पद स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लव मुदार, जिस मधुर लीला का गोविंद लीला में वर्णन किया है वो मान भंजन लीला वहीं पर हुई थी, धीर समीर में हुई थी। बंसीबट में आए, बंसीबट की कथा वहां पर सुना होगा। पहले जमुना पुली में यह स्थान था बंसीबट, जमुना के किनारे बट था बहुत बड़ा, धीर वही जमुना के किनारे बहुत बड़ा भारी बट वृक्ष था। कालांतर में वो वृक्ष गिर गया और उसी के पास से ही गोपीनाथ प्रकट हुए, वो थे उनका नाम परमानंद जी, परमानंद भव मधु पंडित उनके सेवक थे, उन्होंने मधु पंडित को दिया। कालांतर में मधु पंडित जी वो गोपीनाथ जी को वहीं पर प्रतिष्ठित किए और पुनः एक नया बंसी बट वृक्ष वहां दिया। आजकल वो भी लुप्त हो गया है, अब दूसरा वृक्ष है पाकुड़ या क्या क्या वृक्ष है, वो वृक्ष नहीं है। तो यहीं पर कृष्ण ने बंसी बट में सत कोटि गोपियों के साथ में ब्रह्मरात्रि पर्यंत रास किया। दो दो कृष्ण के बीच में एक गोपी और दो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, ऐश्वर्य लीला हुई। और यहीं से राधिका जी अंतर्ध्यान हुई थी और पीछे से कृष्ण अंतर्ध्यान होकर के श्रृंगार बट इमली तला इत्यादि राष्ट्र सेवा कुंज इत्यादि में आए थे। तो ये वज्रण आदि कृष्ण लीला के बाद में ब्रह्मा वज्रनाम महाराज जी ने राष्ट्रस्थली में एक वृक्ष का रोपण किया था, वही जमुना के किनारे था, वो लुप्त हो गया। पीछे से यहां से किया गया वो भी लुप्त हो गया। पासी में गोपीश्वर महादेव के पास में गए, इसकी भी लीला वैष्णव ने सुनाई होगी। कृत प्रकाश से कैलाश छोड़ करके आए, जोग माया पूर्णिमा की शरण में गए, उनकी कृपा से गोपी तो हुए किंतु उन्होंने ब्रज में विवाह नहीं कराया और नाम नहीं दिया, ससुर सास इत्यादि नहीं हुए, केवल गोपी शरीर था। गोपियों ने गुलचे लगाए क्योंकि रास में आनंद नहीं आ रहा था। फूल गए पूर्णिमा जी ने, पूर्णिमा जी को पुकारा, पूर्णिमा जी आई। देखो शंकर से पूर्णिमा जी का कितना प्रभाव अधिक है देखो। और फिर पूर्णिमा जी ने कृष्ण से और गोपियों से कृपा करने के लिए कहा तो कृष्ण ने वर दिया, जो कोई ब्रज में आएगा बिना तुम्हारी कृपा का ब्रज में प्रवेश नहीं करेगा, और विशेष करके साधन भक्त लोगों के लिए जो गोपियां थी उनके लिए ये वर देने में समर्थ हैं, जो तुम कृष्ण लीला में प्रवेश कर सको। जयति जयति वृंदावन वने पते जय सोम सोम मौले सनक सनंदन सनातन नारदेड्य गोपीश्वर ब्रज विलासी जुगांधि पद्मे प्रेम प्रयच्छ निरुपाधि। और कहीं ब्रज विलास या कहीं पर लिखा है ये ब्रज प्रेम को देने वाले हैं, गोपियों को भी दिया। इनकी कौन साधन सिद्धा उनको भी ये आशीर्वाद देते थे, इसलिए आप लोगों का सौभाग्य है। जमी तीरे गोपीश्वरम मनुदिनम तंकील बजे इत्यादि है ब्रज विलास में ही, इसलिए उनके प्रति साधारण बुद्धि नहीं रख करके कृष्ण प्रेम देने वाले हैं गोपीश्वर महादेव, इस रूप में भजन करना चाहिए। इसके बाद में आप लोग कहां गए, गोविंद और ब्रह्मकुंड में गए, ब्रह्मकुंड जहां पर की योग माया ने शंकर जी को डुबो दिया और बाहर किया तो गोपी बन गए थे। अब तो सूखा पड़ा है, अब कोई उसका संस्कार नहीं हो रहा, ऐसे ही ब्रज के कुंड इत्यादि लुप्त हो रहे हैं। फिर वहां से आप लोग गोमा टीला है, जहां पर किस प्रकार से रूप गोस्वामी ने गोविंद जी को प्रकट किया, वहां गाय आती थी प्रतिदिन वहीं पर दूध देती थी और फिर चली जाती थी रूप गोस्वामी को, जे किसी ब्राह्मण ने या बालक ने, ब्राह्मण भी कहीं मिलता है कभी बालक भी मिलता है, बालक उनको बतला गया जे यही पर देखो ब्राह्मण बालक। हाँ कृष्ण स्वयं ही बतला गए जो यहाँ पर गाय दूध देती है जिस क्षेत्र में वो जाती है थोड़ा सा खोदो खूब सावधानी से देखो यहीं पर मिल जाएंगे गोविंद जी, तो खोदा गया है वहीं पर मिले, बहुत सुंदर। और वहां के आसपास के ग्रामवासियों को बुलाया खुदवाया और उसका अभिषेक किया। उनके बाद में पंजाब का कोई भक्त वहां पर मंदिर बनाया, इस तरह से
ये गोविंद देव जी, और उसके बाद में कहाँ से आए? बंद हो गया, गोपीनाथ भवन यहाँ आ गए। इस तरह से परिक्रमा हुई और कल यहाँ से रावल ब्रह्मांड घाट रावल हाँ जाएंगे, तबियत ठीक रहेगी। अच्छा फौरे हमारे संग देखा पर अभी तो जाना है सबके साथ। तो रावल ब्रह्मांड घाट स्नान और वहीं पर कुछ ब्रेकफास्ट बाल्य भोग और फिर गोकुल में दर्शन। गोकुल दर्शन करके दाऊ जी और दाऊ जी के बाद में युगोत्सना प्रसाद पा करके आ जाना, अथवा जैसा हो तुम लोग व्यवस्था करना आना, अथवा जैसा हो देखो शाम को या जैसे जिस प्रकार से देख लेना जैसे सुविधा पीछे हम बात। ओ यू कैन एक्सप्लेन इन हिंदी।
My mind is taking us all on Parikrama again to all the wonderful places the Lord has visited today. First place, Dhir Samir. Dhir means slowly.
তাহলে বলে দিলে হয় সকালে প্রথমেই রাবেল গিয়ে তারপরে আমরা আগে এর মধ্যে রাবেল আগে সকালে দর্শন দিল। অনেকে আবার আপত্তি করছিল সকালে যদি রাবেল হয় তাহলে অনেকে যাবে আবার দর্শন করে ফিরে আসবে, অনেকে অনেকে রাবেল দেখে চলে আসতে
চায়।
আগে রাবেল হয়ে যাবে
ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে যে ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে প্রথমে যে খাবে তার আটটা নটা বেজে তারপরে একটা গ্যাপ থাকবে
Samadhi is also here in Dhir Samir. The very intimate associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Akasha Pandit, had a prominent disciple, his name was Gopal Guru Goswami. Shortly after the disappearance of Akasha Pandit, also Gopal Guru Goswami, he became unmanifest from this world. Vaishnavas never die, but he became unmanifest from the vision of the common people of this world. At that time, his prominent disciple, that is Gyanachandra Goswami, he became in charge of the Radhakanta March, wherein Sri Chaitanya Mahaprabhu's place of pastimes got very situated. So Gyanachandra Goswami, he is very rustic and learned because he had heard all Siddhanta from Gopal Guru Goswami. At that time, after the disappearance of his Gurudev, some government ministers, they were making a disturbance to the Radhakanta March, and they stopped the prasadam, which used to come from the Jagannath temple, from going there. So at that time, Gopal Guru Goswami was in a dilemma about what to do, but a Vaishnava, a very good Vaishnava, came to Jagannath Puri and he'd just been in Vrindavan. He said, "Why are you disturbed? I have seen your Gurudev is there in Vrindavan at Dhir Samir and doing bhajan." When Gyanachandra Goswami heard this, he was astonished and he set out from Jagannath Puri on foot and walking for many, many days, 2,000 kilometers, finally, he arrived here in Vrindavan and came to Deer Samir and saw that his Gurudev was chanting Harinam and absorbing ecstatic love, doing bhajan there at Deer Samir. His Gurudev told him, "You should return to Jagannath Puri, and there is one neem tree. You should cut this neem tree and then make one deity of me, and then in the form of the deity I will make all arrangements, all problems will be solved."
He is here, right? So, Shruti Maharaj is here, he is in the back. So.
On the order of his Gurudev, he returned to Jagannath.
Are you okay?
Sorry.
Did not see.
A little depressed.
He should sit on bed.
You can call.
And
where
then
in the back.
All the problems with the government stopped, and right. Those government ministers who were creating problems, they came spontaneously by themselves and apologized to Janachandra Goswami and offered him all respect. So Srila Gurudev commented that this is the nature.
Oh, you shall be silent. Oh, Krishnadas, Kaviraj.
This is the nature of the harikas of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the associates of Mahaprabhu. They are all transcendental. In one place, it may seem that they have disappeared, and at the same time, somewhere else they may appear. You should not think that it's impossible, because they are transcendental liberated personalities. So, close by is one place that is called Maan Bhajan Stali, the place where Krishna, he was taking great pains to encourage Radhika to give up on sulky mood. So, Jayadeva Goswami has described this in his Gita Govinda. Krishna was humbly requesting Srimati Radhika, "Smara Gaya Khandanam, Mama Sirasi Mandanam, Dehi Pada Palavam Udharam. I am burning from the fire of Kamdev, and the only cure for this is that you will kindly decorate my head with your soft lotus feet." From there, devotees came to Bhansi Bhat. Bhansi Bhat used to be right on the very bank of the Jamuna, and there was a huge banyan tree there. So, after a long time, this tree fell to reveal in the earth the deity of Sri Gopinath. This deity was discovered by Sri Paramananda Bhatta, and then he gave this deity to be served by Sri Madhu Pandit, who again planted another tree there in place of the original tree. In this place, Bhansi Bhat, Sri Krishna met with Radhika and all gopis of Vrindavan, and he performed Rasa Leela for Brahmaratri, one night of Lord Brahma, millions and millions of years, but in one night. So at that time, Krishna, he manifested thousands and thousands of forms, so that one form of Krishna could be with each gopi during the Rasa Leela. This is his Aishwarya, manifestation of his vast Aishwarya, opulence. Srimati Radhika disappeared from the Ras, and Krishna followed her and came to Shringarbhat. So these pastimes began there at Bhansi Bhat. After visiting Bhansi Bhat, all devotees went to have darshan of Gopeshwar Mahadev. Gopeshwar Mahadev, how did he assume this form? When Sankara was in Kailash, absorbed in remembering the Rasa Leela, he became very inspired, and he left Kailash and came here to Vrindavan because he wanted to see that leela for himself. When he arrived here, he took shelter of the lotus feet of Purnamasi Jogamaya, and she took him to Brahmakund. You've also seen that place today. Now the tirthas are gradually disappearing from our vision, so though it was a kund before, now it's dry. But Jogamaya Devi, she dipped Shankar Mahadev in Brahmakund, and when he came out, he had a very beautiful Gopi Deha, the form of a cowherd girl. So Jogamaya mostly gave him the body of a gopi, but she did not give her a name, a place of residence, the name of our husband, mother-in-law, father-in-law, or any of these things. So when this Gopiswar was discovered by the other gopis and they asked, what's your name, who is your mother-in-law, he could not give an answer. And they began to slap her. So that time, Yogamaya came and told Krishna and the gopis, oh, she's my Kripa Patri, she's the object of my mercy, you should also give mercy to her. So then, Krishna, he gave the benediction that if anyone will come to this place, no one will be able to enter the Dham without the mercy of Gopeshwar Mahadev. And what's more, the Saraks who are doing bhajan to attain service of Radha Krishna in Rasalila, they will not be allowed to enter without the mercy of Gopeshwar Mahadev. So Srila Sanatana Goswami Pad has prayed to him, Vrindavanavani Pakai Jaya Soma Soma Mole Sanaka Sanandana Sanatana Naraditya Gopeshwara Bhajabilasi Yugandri Padme Prema Priyacha Nirupadi Namo Namaste. O Gopeshwar Mahadev, you are worshipable for Narad, for the four Kumaras, and I am praying to you, I take shelter of you, because you can bestow unconditional love to the lotus feet of Brajavilasi Krishna. Also, in Brajavilas, Srila Raghunath Das Goswami has prayed to Gopeshwar Mahadev, Mudago Penda Satya Buja Prisvanga Nide, Sprat Gopi Vrindayamiya Bhagavantam Pranayabi. Vajan Vista Bhakta Samabilasidam Chiran Pachirad Yami Chire Gopishwaram Anudinam Tam Kilavaje. There Raghunath Das Goswami described how the gopis of Vrindavan, they would perform worship of Gopeshwar Mahadev and pray to him, oh please give us one jewel. What jewel do you want? We want to attain the jewel of the embrace of the son of Nanda Maharaj. So because Mahadev is easily pleased, Raghunath Das Goswami, but he said, Achira Abhilasitam Paktam Achirad, very soon Gopeshwar Mahadev blessed them with the fulfillment of their desire. So Gopeshwar Mahadev can give such blessings that our sadhana, our practices will become siddha, will become perfect. In this way, we can worship Gopeshwar Mahadev. So afterwards, the gopis, then the Parikrama continued and visited the temple of Govindadev. Nearby is one place called Gomatila, a small hill. And when Rupa Goswami Pad was doing bhajan here in Vrindavan, one day a Brahmin boy approached him and told him that here in this place, Gomatila, there's a hole in the ground and every day one cow comes and automatically milk flows from our udders and goes into this hole. So Rupa Goswami Pad became very curious and he went there and moved the soil and discovered a deity was there. And it was the original deity of Sri Govindadev, established 4,500 years before by Vajranam. So that Brahmin boy who gave a hint, who gave a clue to Rupa Goswami was Krishna himself. So when Rupa Goswami Pad took the deity out from the soil, many Brijvasis came and they did an abhishek of Govindadev. And one wealthy devotee, he constructed this large mandir that all the devotees visited today, which is called the Govindadev Mandir.
Raghunath Das Goswami Rupanuga Vaishnava hai. Sarsat mein Raganuga bhi hai. इन्होंने शिलरूप गोस्वामी के फाउंडेशन दिए हुए उपदेश अमृत के ऊपर में मन शिक्षा का भवन बनाया. पहले आप लोगों को शिक्षा करना पड़ेगा उपदेश अमृत और फिर मन शिक्षा. वो भी रागानुगा के लिए पीठ स्वरूप है और ये रागानुगा भजन की पद्धति है. रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड में आए, अन्न जल सब कुछ छोड़ दिया, অন্ন জল ত্যাগ কইল অন্য কথন আর দূসরা চর্চা পরচর্চা ইত্যাদি ছোড় করকে সব কু ছোড় দিয়া দূসর লোকের সে বাতচিত করার অন্ন জল সবকা ত্যাগ কর দিয়া পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ এক দোনে মে ছোটে সে দোনে মে থোড়া সা এক ছটাক আধ ছটাক বস মঠা পিতে থে আর কুছ নেই লেতে থে সহস্র দণ্ডবত করে সহস্র বার দণ্ডবত করতে থে কিনকে লিয়ে নন্দ বাবা যশোদা মৈয়া কৃষ্ণ কনহৈয়া দাউ ভৈয়া রোহিণী মৈয়া আর জিতনে ললিতা বিশাখা চিত্রা ইনকে লিয়ে আর বৈষ্ণব লোকে লিয়ে আপনি পূর্ববর্তী বৈষ্ণব জিতনে থে যে সিদ্ধ মহাত্মা থে উন লোকে লিয়ে 1000 বার দণ্ডবত প্রণাম উনিকে দেখা দেখি আজকাল লোক দণ্ডবত পরিক্রমা করতে হ্যাঁ এক জগহ মে 1000 বার 108 বার 1000 বার আর লয় লক্ষ নাম 1,00,000 নাম করতে থে রাত্রি দিনে রাধা কৃষ্ণের মানসী সেবন দিন রাত রাধা কৃষ্ণ কি অষ্টকালীয় লীলা কাজ মানসিক সেবা হো করতে থে এক পহরম মহাপ্রভুকে চরিত্র কো বলতে থে কহতে থে প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন তিন সন্ধ্যা রাধা কুণ্ডে অপিত অপতিত স্নান তিন বার সবেরে দোপহর ও সন্ধ্যা কে সময় অপতিত মানে একদম কন্টিনিউয়াস কবি ভি ইধর উধর নেই হো তিন বার স্নান করনা হি চাহিয়ে মহাপ্রভু সমুদ্র মে স্বর্গ দ্বার পর তিন বার স্নান এসে হি করতে থে অপতিত রূপ মে ব্রজবাসী বৈষ্ণব রে দে আলিঙ্গন দান আর ব্রজবাসী জিতনে বৈষ্ণব হ্যাঁ উনকো আলিঙ্গন দান করতে সার্ধ প্রহর সার্ধ সপ্ত প্রহর সাড়ে সাত প্রহর আট প্রহর কা দিন রাত তো সাড়ে সাত প্রহর করে ভক্তির সাধন ভক্তি কা সাধন করতে থে আর চারি দণ্ড নিদ্রা কবি ও ভি নেই সেহ কহন নহে কোনো দিন ইতনে কঠোর ভজন করতে থে হমলোগ ইতনা তো নেই কর সকতে কিন্তু আদর্শ ভজন কে রূপ মে ইয়ে সব দেখনা চাহিয়ে আর এসে হি ভজন করনে কি চেষ্টা করনি চাহিয়ে যো দূসরি বাত বলনে কা সময় নেই দিন রাত কৃষ্ণ চিন্তা হরিনাম সংকীর্তন আর সব রঘুনাথ দাস গোস্বামী এসা বৈরাগ্য হোনা তো কঠিন হম লোক তো মর যায়গে এক দিন মে তবে যা তক হো সকে বৈরাগ্য ইত্যাদি কা অবলম্বন করনা চাহিয়ে ইউ শুড এক্সপ্লেন ইনহোনে মনস শিক্ষা কে লিয়ে মন কে শিক্ষা দেনে কে লিয়ে মনস শিক্ষা বতলায়া হ্যা ইসি কা হম লোক কুছ দিন নিরন্তর পাঠ করে
শিল রঘুনাথ দাস গোস্বামী অ্যাসোসিয়েট অফ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কেম টু দিস ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড পারফর্ম হিজ পাস্ট টাইমস অ্যাজ অ্যা সাধক অ্যা প্র্যাকটিশনার অফ রাগানুগ ভক্তি অ্যান্ড নট ওনলি রাগানুগ ভক্তি বাট রূপানুগ ভক্তি ফলোইং আউটওয়ার্ডলি অ্যান্ড ইন্টারনালি দি অ্যাক্টিভিটিস that Rupa Goswami performed outwardly and as Rupa Nanjani performed internally. So, Srila Rupa Goswami Pad constructed a foundation, and that foundation was Upadeshamrita, the nectar of instruction. And on the basis of the foundation constructed by Srila Rupa Goswami, Srila Raghunath Das Goswami has built a palace, and that in Paris is Sri Manashiksha. So Upadesamrita comprises the basic platform of our spiritual activities, and Manashiksha is specifically our Rupa Nuga Bhajan Padati. In other words, it explains in a very practical way exactly how to perform Rupa Nuga Bhajan. Srila Raghunath Das Goswami, his life and glories have been explained in
Chaitanya
Charitamrita. There it is stated that Srila Raghunath Das Goswami, he renounced everything. He left his home and family members. He did not accept any money sent by his parents. He was eating very little. He would never speak any other kata. He would never speak about any subject other than the glories of Mahaprabhu and Radha and Krishna. He used to give 1,000 dandavat pranams, falling on the ground like a stick to pay obeisances, 1,000 times every day to all the pure Vaishnavas, Mahatmas, to the associates of Mahaprabhu, Radha and Krishna, their associates, and the places of their pastimes. He would chant at least 64 rounds, 100,000 holy names every day. And day and night, in the core of his heart, he would render service to Radha and Krishna in the Astakali Lila. It's called Manasik Seva. So, for one praha, about approximately 3 hours, Sri Raghunath Das Goswami, every day, he would speak about the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And 3 times a day, morning, noon, and evening, he used to take bath in Radha Kund. As Sri Chaitanya Mahaprabhu himself, when he was staying in Jagannath Puri, he also used to take bath 3 times a day in the ocean at Swargadwar. Srila Raghunath Das Goswami, he would lovingly embrace the Vaishnavas. And 7.5 prahar, just almost the whole day, except for 1 hour and 36 minutes, he would engage in bhajan. And for 4 dandas only, means 1 hour and 36 minutes, he would take rest and he would sleep. But even his sleeping was not sleeping. At that time, he would also be absorbed in Radha and Krishna. So, in Sri Chaitanya Charitamrita, we find this description of his very severe and difficult regimen of sadhan bhajan. It is not possible for us to imitate him. We cannot practice as he has done. Yet, we always look towards Srila Raghunath Das Goswami as the ideal example of a Rupa Nuga sadhan.
Now, Manashiksha. गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने भूसुरगणे स्वमन्त्रे श्रीनाम्नि ब्रजद्वदन्दशरणे सदादम्भं हित्वा कुरु रतिम् अपूर्वम् अतितराम् अये स्वान्तर्भ्रातश्चटुभिराचे धृतपद. मेरे अबोधमन, मेरे प्यारे भैया, भैया कह रहे हैं प्रेम के साथ में मन को समझा करके, अबोध भी कर रहे हैं, स्वांत माने अंतःकरण मन. मेरे प्यारे भैया मन, मैं तुम्हारे चरणों को पकड़ करके नम्रता पूर्वक प्रिय वचनों के द्वारा प्रार्थना करता हूं, सब प्रकार का दंभ प्रत्याग करो. मैं कुछ जानता हूं, यह दंभ प्रत्याग करो और अपने गुरु गुरुदेव में गोष्ठे ब्रजधाम में गोष्ठालय सु गोष्ठ में जो रहने वाले ब्रजवासी जनों में सुजने वैष्णवों में भूसुर ब्राह्मणों में भगवान नाम में तथा ब्रज के नित्य नवीन किशोर किशोरी राधा कृष्ण के चरणों में शरण ग्रह कर नयनतर्जमयी लोकोत्तर रति का विधान करो. इसका तो माने ये हुआ, किंतु इसमें एक एक को बतलाना अच्छा रहेगा। गुरु गोष्ठ गोष्ठ आलेश, इसमें श्रील भक्त विनोद ठाकुर जी ने अलग अलग बतलाया है। यू शुड एक्सप्लेन।
So after acquainting us with the life and personality of Srila Raghunath Das Goswami, Srila Gurudev proceeds to explain his Rupa Nuga Bhajan and his Vimana Siksha. In the first verse it is stated, Gurau Gaushte Gaushtare Susujane Busurakane Somantre Srinami Rajanam Yugodandashane Sadadam Bhamitla Kururatva Purvam Atitaramai Sonsai Vratastatavi develop unflinching and unprecedented attachment to the lotus feet of Sri Guru, your spiritual master, to go stay to the places of the pastimes of Radha and Krishna Brajananda, go style issue to the residence of Braj, develop unprecedented attachment for Sujan, for the Vaishnavas, Bhusura, for the Brahmins in the Dhan, Somantre Sri Namni, develop unprecedented attachment for the ones, the mantras given by Sri Guru, for the holy name Hare Krishna Mahamantra, and for the shelter of the divine couple Sisi, Radha and Krishna. So this is the general translation of the first verse of Manasiksha, but we should know it very, very deeply. Srila Bhaktivinoda Thakur has explained each word in so many different ways. So now, Srila Gurudev will explain the first verse of Manasiksha according to the commentary of Srila Bhaktivinoda Thakur.
Can you explain word by word? You? What? Word by word.
It has ordered me to briefly give word for word for the first verse of the sutra. Guru, here he begins by offering obeisance to both Diksha and Siksha Guru. Diksha Guru is one who gives Diksha mantra, and Siksha is Guru who may be the same as Diksha Guru later, but who gives instruction in bhajan, in confidential bhajan. Go stay. These are the pastime places of Braj, Radha and Krishna and Braj. Literally the pasturing grounds of the cows. So of course everything takes place in this beautiful meadows of Braj. Gostala Ishu. Now we're discussing those inhabitants of this Braj, the Brajavasis. Srila Gurudev describes those in the purports as the pure devotees of Radha and Krishna, and they are Uttam Mahabhagavats. Then, Sujane. Sujane means Vaishnavas who may not be fully attached to the worship of Radha and Krishna, Yuga Kishore, but they are in the four sampradayas, and they may reside in Vrindavan, so although they don't have the pure mood of sweet Braj, they are still to be respected, and in the purport they are described as Madhyam Adhikaris. Then, Bhusara Gane. This refers, Bhusara means lords of the earth. Bhu, Bhumanda, Sura, the Lord. So lords of the earth mean the Brahmin caste. So here they are described by Bhaktivinoda Thakur as the Kanishta Adhikaris. They may be doing so many other types of rituals, Paramakandas, Yajnas, different things. In Braj, not worshipping according to pure Vaishnava Tantra, But still, we should respect them also. So the different levels of devotees have been described. Then he describes swamantra. Your Diksha mantras given to you by your guru should be chanted faithfully 3 times a day, every day. You should know them. Srila Gurudev also has used this as an example for some people are preaching that Diksha mantra is not essential. When he says if it was not essential, then why would Srila Raghunath Goswami say to offer unprecedented attachment for your Diksha mantra? And then also, Sri Namni means the holy name. So this is clear, there is a distinction between one's Diksha mantras and the holy name, and both are given honor and respect. If one chants one's Diksha mantras carefully, then his chanting Hari Nam will proceed very quickly to perfection. Whereas without Diksha mantra, may take a long time. And one should take sharanagati. One should take complete shelter at the lotus feet of Raja Nava Yuva, the divine youthful couple. Then he says, another qualification, sadajan vam hitva. You should give up all false pride. This will be necessary to clear the way so you can be honoring all living entities and properly respecting all inhabitants of Raj. Sadadamam hitva. Kuru ratyam. This means that rati, that spiritual attachment, kuru, you should be making intense endeavors for achieving this spiritual attachment. Apurvam atitaram. Apurvam means unprecedented. Then he says, you should be making, you should have an unprecedented spiritual attachment and making very intense endeavors to attain this. In the purport, Srila Gurudev and Srila Bhaktivinoda Thakur described, if you're making these intense endeavors, then you'll get the mercy of Guru and Krishna. So some effort has to be made from our side. We should not count that we will be like someone getting the honorary college degree while not going to school. This is a very exceptional case. Someone like an Einstein or anyone, they may later show in life they have some sanskar from previous life to deserve all kinds of honorary degrees, but for most people, they will not get this just automatically. They will have to do some work in the college. So we will have to do some hard sadhana and bhajan. Then mercy of Guru and Vaishnavas will flow to us very well. Swantar Bratas. Now, this is the appeal to the mind. My dear brother, Bratas, Chaturvir, and with sweet words, I'm approaching you. Please, Abhyache, I pray to you, and Dhritapadaha, I fall at your feet. Please listen to this prayer.
Thank you. Bhakti Vinod Thakur kate hai, Guru, ita ki vibhakti, du vachan hai, ek vachan, kaise? ये कह रहे हैं, ये महात्मा जी कह रहे हैं, महात्मा हमारे सप्तमी
आधार सप्तमी सप्तमी
दो वचन है गुरा गुरा खैर गुरु अनर्थों को दीक्षा माने संबंध ज्ञान देने वाले और कृष्ण संबंध को ज्ञान संबंध ज्ञान देने वाले भागवत श्रेष्ठ होना चाहिए तब तो वो गुरु शब्दवाच्य है भागवत श्रेष्ठ नहीं होगा तो भगवान की प्राप्ति असंभव है और राधा कृष्ण जुगल की शिक्षा देने वाले भागवत ये भी श्रेष्ठ हैं उनको शिक्षा गुरु कहते हैं इन दोनों गुरु का कभी भी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए गुरु और अवज्ञा नहीं शिक्षा गुरु की दीक्षा उनके आदेशों को बिना विचार के मानो अब पीछे से विचार करो ये कैसा किया
मानना है जरूर, अवज्ञा नहीं करना है, किंतु गुरुजी ने क्यों आदेश दिया इस पर भी तो विचार करना है, इसलिए विचार भी करो किंतु पहले मान लो। किसी तरह से अवज्ञा हो गई शिक्षा गुरु की तो फिर भजन राज्य से चौट। कभी कभी शिक्षा गुरु का महत्व अधिक होता है, इसलिए दोनों गुरुओं के प्रति। शिक्षा गुरु कौन है? जो दीक्षा गुरु के अनुकूल है, स्वजाती है, और कुछ कृष्ण की अनुभूति है जो गुरु के लक्षण बतलाए गए हैं, वह भी किसी के लिए एक दीक्षा गुरु हो सकते हैं, किसी के लिए वही शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं। क्या ठीक है? जैसे पूज्य पाद श्रीधर महाराज हम लोगों के शिक्षा गुरु मान लें, दीक्षा गुरु हमारे गुरु जी हैं। यूं तो हमारे गुरु जी हमारे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों हैं, किंतु हम उनको शिक्षा गुरु के रूप में, और उनके जो शिष्य हैं हमारे गुरु जी को भी शिक्षा गुरु के रूप में। अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। ब्रजधाम गोष्ठ, गोष्ठ मैंने जहां पर गोपी गोवत्स इत्यादि निवास करते हैं, जहां रहते हैं उसी को गोकुल कहते हैं या उनको ब्रजधाम कहते हैं। गोकुल वृंदावन नंदगांव बरसाना श्री जावर गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड इत्यादि ब्रजमंडल के सभी स्थल गोष्ठ हैं। यहां पर कृष्ण की लीलाएं निरंतर होती हैं, आज भी होती हैं। इन सबको गोष्ठ से समझो, गोकुल समझो या ब्रजधाम समझो। कह सकते हैं भगवत भजन शास्त्रों का तात्पर्य जहां कहीं रह करके करें, किंतु धाम का अपना महत्व है, इसलिए ब्रजधाम में कहीं रह करके भजन करना उपयुक्त है। और यदि ऐसा नहीं कर सकते किसी कारण से, तो मन ही मन में ब्रजधाम में वास करो और भगवान का भजन करो, किंतु भजन होना चाहिए। जैसे अभी रघुनाथ दास गोस्वामी का बतलाया, रूप गोस्वामी का, जीव गोस्वामी, सब गोस्वामियों का, हमारी परंपरा भक्ति विनोद ठाकुर जी यहाँ पर कम आते थे किंतु ब्रजभाव से ही भजन करते थे, जहाँ रहते थे वहीं पर स्वानंद सुखद कुंज इत्यादि की रचना करके वहां पर, जैसे रूप गोस्वामी महाप्रभु के आने के पहले वैसे ही करते थे। इसलिए शरीर के द्वारा यदि संभव नहीं है तो मन के द्वारा करो, प्रीति पूर्वक करो, किंतु ब्रज में रहना है एक दिन, दूसरी जगह में भजन करेंगे खूब अमेरिका में, बात ठीक है वहां पर भजन करो अमेरिका में इंग्लैंड में रशिया में, किंतु गोवर्धन की तराई में राधा कुंड श्याम कुंड में नंदगांव में भजन करने से लीलाएं अपने आप स्फूर्ति होती है, भांडीर बनतेर कदम और सब। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग इन स्थानों पर भजन करते थे, नंदगांव में बहुत से अधिक लीलाएं हुई हैं, उद्धव जी वहीं आए, अक्रूर जी वहीं आए, वहीं पर गोपियों के साथ में दृढ़ संवाद हुआ, वहीं पर रास लीलाएं भी हुई हैं, तेर कदम्ब है और सब लीलाएं। रूप गोस्वामी का भी भजन स्थल है और सनातन गोस्वामी का भी, पीछे से गोपाल भट्ट साकेत में गए, वहां पर भजन किया। ब्रजवासी जन कौन? ब्रजवासी जन है गोष्ठ में रहने वाले नंद बाबा जसोदा और ललिता विशाखा इत्यादि सभी ब्रजवासी जन हैं, और उन्हीं के भावों वालों जो रूप सनातन इत्यादि ये ब्रजवासी हैं। ब्रज में रह करके भी ब्रज का भाव नहीं समझते, उनको उचित आदर देते हुए अपने रूप गोस्वामी ने जो भजन की पद्धति दिखलाई है वैसा भजन करो। इसलिए यहाँ पर बतलाया है किसके प्रति क्या कर्तव्य है, कैसे भजन करना चाहिए, उनको सम्मान कैसे देंगे। इसलिए हृदय का सारा प्रेम रति किनके चरणों में, ऐसे गोष्ठ और ब्रजवासियों के प्रति, रूप सनातन इत्यादि के प्रति। और ब्रजवासी जन में भक्त मात्र ही शुद्ध ब्रजवासी हैं। ये लोग भोग मोक्ष की बात ही क्या, बैकुंठ ललसा के भी त्याग कर राधा कृष्ण जुगल की सेवा के लिए तन से मन से वचन से सब प्रकार से ब्रज में ही वास करते हैं, ब्रज को छोड़कर के कहीं नहीं जाते। ये सभी उत्तम भागवत हैं, ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी हैं। उनकी कृपा के बिना रागानुगा भक्ति में प्रवेश नहीं होगा। मैं सदाचारी तत्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानने वाला हूँ, भगवत भक्त हूँ, किसी विषय में किसी से कम नहीं हूँ, ऐसा छोड़ करके भेदभाव ब्रजवासियों के चरणों में प्रीति रखनी चाहिए। ब्रजवासी मैंने जिनको मैंने कहा रूप सनातन इत्यादि, रघुनाथ दास गोस्वामी इन लोग को और वहां के जितने भी धाम हैं, बंशीवट, टेर कदम्ब, भंडीर बन इत्यादि, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, गोवर्धन, ये सबको प्रणाम करते थे 1000 बार। कैसे इतना चुल्लू भर मट्ठा, शरीर में प्राण नहीं, और कैसे भजन करते थे। ऐसे भजन करने से भगवान मिलते हैं। सुखपूर्वक जो भजन हम कर रहे हैं अभी, ये भजन का आभास है या नहीं भी है। सुजन, सुजन मैंने चारों वैष्णव संप्रदाय और उनकी शाखाओं के आश्रित सांप्रदायिक भगवत भक्तजन जो स्वरूपतः ब्रज में वास नहीं करते, स्वरूप से ब्रज में वास नहीं करते, अर्थात ब्रज में निवास करने पर भी ब्रजभाव से राधा कृष्ण की अनुरागमयी सेवा नहीं करते, उनको यहां पर सुजन सदाचार संपन्न है और भगवान के किसी एक स्वरूप को भजन करते हैं, इसलिए निम्बार्क हैं, रामानंदी हैं, रामानुजी हैं और सब संप्रदाय के लोग हैं, उनको भी वैष्णवों को आदर करना चाहिए भेद बुद्धि छोड़ करके। ये मध्यम भागवत हैं, पहले वाले उत्तम भागवत ब्रजवासी लोग, और ये दूसरे जो सुजन हैं और संप्रदाय के लोग, ये मध्यम भागवत हैं। भूसुरगण दैव वर्णाश्रम में निष्ठा संपन्न वैष्णव धर्म के शिक्षित शिक्षक भूसुर हैं, ये पृथ्वी के देवता हैं। ऐसे जो भजन नहीं करता है और ब्राह्मण हैं, देवता देवियों की उपासना करते हैं, उनके लिए नहीं, जो वर्णाश्रम धर्म में निष्ठा रखते हैं किंतु वैष्णव धर्म एकांतिक नहीं है। जैसे हमारे गुरुवर्ग लोग भजन करते हैं एकांतिक रूप में, वो एकांतिक रूप में नहीं करते हैं, ये कनिष्ठ भागवत है। कनिष्ठ वैष्णव नहीं, कनिष्ठ भागवत माना गया। इनके प्रति भी प्रीति रखनी चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है नृग के प्रसंग में, द्वारकावासियों को समझा रहा है, समझा रहे हैं, विप्रम कृतक कृतक आवशम अपि नैव द्रोह्यन्त मामका घ्नंत बहु शापतम वा नमस्कुरुत नित्य। सर मेरे प्रियजनों, द्वारकावासी को समझा, प्रियजनों अपराधी यदि ब्राह्मण है, ब्राह्मण है तो भी देश मत करो, वह ताड़ना करे, मारे भी, श्राप भी दे, उनको नित्य नमस्कार करते रहो। अतः इनके प्रति द्वेष किनके लिए बतलाया, जो ऋषि लोग वहां तो ब्राह्मण लोग थे, दुर्वासा थे, नारद जी थे, अंगिरा, अत्री और सब लोग थे, उनके लिए दिखला करके कर, ऐसे लोग हों, श्राप भी दें मारे भी गाली गलौज भी करें तो इनके प्रति तुम दुर्व्यवहार न करो, तुम्हारा दुर्व्यवहार न हो। स्वमंत्र गुरु जी ने जो मंत्र दिया है दीक्षा के समय नियमित रूप में उसका त्रिसंध्या स्मरण करो, उदासीन मत हो। कुछ लोग कहते हैं कि हरिनाम करने से हो जाएगा, दीक्षा मंत्र जपने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही नहीं, दीक्षा मंत्र अपने स्थान पर है। मंत्र है वो संबंध ज्ञान प्रदान करता है। गोपाल मंत्र की गति कहां है, कहां तक है? काम गायत्री का स्वरूप क्या है? कृष्ण का स्वरूप है, उनकी काम गायत्री बीज मंत्र से उपासना होती है। तो ऐसे मंत्रों को उपेक्षा मत करो, नियमित रूप में तीन संध्याओं में उसका जरूर स्मरण करो। उससे अतिरिक्त हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 16 नामात्मक नाम मंत्र को कलयुग का महामंत्र कहते हैं, इसको जरूर करना चाहिए। 1,00,000 हो सके तो करो, विशेष सेवा में रहते हो तो कुछ कम कर सकते हो, वो सेवा भी वैसे नाम के ही समान है। इसलिए जहां तक हो सके अधिक नाम करो। ब्रज द्वंद शरणे अनन्य भाव से राधा कृष्ण जुगल किशोर के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना, राधिका दासी यदि होए अभिमान शीघ्र मिले तबे गोकुल गए, दंभ छोड़कर माया छल कपटता अविद्या कुटिलता शस्ता आदि को दंभ कहते हैं। भक्ति के अनुशीलन में इष्ट देव के की प्रीति वृद्धि के अतिरिक्त और किसी दूसरी कामना वासना मत रखो, रखना कपटता है। साधन में कर्म ज्ञान और योग इत्यादि की प्रधानता होने से भक्ति नष्ट हो जाती है, इसलिए इसको भी दूर रखो। यत्नपूर्वक इन सब का प्रत्याग कर एकांतिक भाव में राधा कृष्ण का भजन रूपानुग पद्धति के अनुसार में करो, रघुनाथ दास गोस्वामी के। अपूर्व रति, रति मैंने अनर्थ युक्त अवस्था, श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति और इसके बाद में रति, ऐसे आत्मरति रखो। इसलिए कनिष्ठ वैष्णव के द्वारा ऐसा रति रखना भी मुश्किल है, तो वैसी रति रखो इन सब के प्रति। शुद्ध स्वरूप में शुद्ध कृष्ण रति है जीवों के शुद्ध स्वरूप में, किंतु माया के द्वारा वो विकृत हो गया है, हम उसे भूल गए हैं। यदि चाहते हो तो उन इनके प्रति जो नौ कहे उनके प्रति शुद्ध रूप में प्रीति रखो, रति रखो, शीघ्र विधान करो। अतिथराम शीघ्र विशेष व्याकुलता के साथ में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, आत्मरति का अवलंबन करो, आत्मरति तक पहुंचो। यदि भाग्य में भक्ति होगी तो होगी, ये नहीं, उत्साह निश्चय। इसलिए जितना भजन करेंगे उतना ही आत्मबल प्रकाशित होगा। उपदेश का यह तात्पर्य है कि जब तक भगवत संघ के प्रभाव से कर्म वासना क्षीण नहीं होती है, जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है परलोक परमार्थिक, और जब तक दृढ़ विश्वास रूपी श्रद्धा नहीं होती, तब तक हरि कथा सौदोपदेश श्रवण और ग्रहण की योग्यता भी नहीं होती है। यदि वैसी सुकृति न हो तो जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो हरि कथा बोलने से भी नहीं सुनेंगे, दूसरे कर्मों में रुचि रहेगी। सौभाग्यवश परमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न होने पर सर्वप्रथम दीक्षा गुरु के शरणागत होकर के जुगल मंत्र ग्रहण करो और मंत्र लेकर के दीक्षा गुरु शिक्षा गुरुओं को आत्मरति के द्वारा पूजा करो। गुरुदेव को मुनि समझकर केवल सम्मान देकर के संतुष्ट मत हो, अपितु अपना परम हितैषी प्राण बंधु समझकर प्रीति पूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा करो। तद्विधि प्रणिपात परिप्रश्न सेवया, बिना सेवा के भाई नहीं होगा, सुकृति भी नहीं होगी। इसे दिन रात हरिनाम करेंगे, किसी वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे, हम तो करेंगे महाप्रसाद सेवा, उसमें बड़ी रुचि है, आत्मरति है, और वैष्णव की सेवा में रुचि नहीं है तो भजन निष्फल जाएगा। इसलिए ऐसा समझकर राधा कृष्ण को अपना प्राण समझ करके उनमें आत्मरति करना चाहिए। रामचंद्र यू कैन ट्रांसलेट।
I pray at the lotus feet of my the Gurudev. I was out of love, not in practice of translating since long time, and abruptly he has given me this job so that I may be able to translate. The Gurudev is explaining that
first from Guru.
Guru, the question was, how, which Guru? The Gurudev is saying, in Sanskrit there are three vajan, ek vajan, dyu vajan, bahu vajan. In English there are a singular number and plural only, two numbers are there. But here Guru means two type of Guru has been mentioned. Not Duryodhana. Gurudev is saying that it is that Duryodhana.
Ek vachan, du vachan both. Both. एक वचन और दो वचन दोनों, कहीं पर उनको संबोधन करते हैं तो वो
सम्मान देने के लिए ऐसे दो वचन भिन्न प्रयोग होता है, ऐसे बहुत कम एक वचन प्रयोग होता है।
तब दो गुरु के ही संबंध में बात है।
तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर इज एक्सप्लेनिंग हियर दो वचन, टू गुरु, टू टाइप ऑफ गुरु, नंबर वन दीक्षा गुरु एंड नंबर टू शिक्षा गुरु। Who is Diksha Guru? Who establishes our relation? Who gives us relation? Who gives us Sambandh Gyan? He is Diksha Guru. And he must be Param Bhagavat. If he is not Param Bhagavat, he cannot be a Guru. What does it mean by Param Bhagavat? Who is expert in Srimad Bhagavat? Who is expert narrator and who lived according to Srimad Bhagavatam. And then it is Shiksha Guru. Who is Shiksha Guru? Shiksha Guru is who is giving us teaching for it. He may be Shiksha Guru also. Shiksha Guru, who is elevated and advanced, he is giving us Shiksha. So, sometimes it happens that Shiksha Guru is more advanced than Shiksha Guru. The net result is that we have to pay our full respect to both Shiksha Guru and Shiksha Guru. There must not be any disobedience. We should not give up following their order. Their order should be our life and their order should be strictly followed. Then only we can realize Krishna. Srila Gurudev is explaining about himself that our Gurudev, we were having Diksha from him and also Shiksha from him. But at the same time, they were going to Purivad Siddha Maharaj also, considering him as Shiksha Guru. So, we have to pay our respect, similar respect, same respect. Why? Because Shiksha Guru is also of the same level. He should be anukul in accordance with our Shiksha Guru. And then only we can have realization of Krishna. Full respect for Guru. From Guru it comes the place, the abode. Gokul, ghost. What is ghost? We can call it Vrajdham or we can say it Gokul. Nandgaon, Gokul, Barsana, Javad, these all places are ghost, where sweet pastimes take place of Radha Krishna. We should do our bhajan in these places. If it is not possible physically to be in these places, then by our mind we should reside in these places and do our bhajan. Where should we do our bhajan? It is not possible for us to reside in bed. We are living in America. We can do our bhajan in America also, USA also. But at that time, our mind should be as if we are living in this Vrindavan. Srila Gurudev is saying, one thing we should note, finally, he says, finally, we have to come to this Vrindavan. And we have to do this bhajan in this Vrindavan. He is mentioning, suppose if we are doing our bhajan in America, with full absorption, trying to absorb ourselves, our mind in Vrind. But if we come really at Nandgram, Vartana, and especially Nandgram there, where so many pastimes have taken place, there is Uddhav Gyani, there is Pavan Sarovar, so many other places of pastime. Our acharyas have come to these places. They have performed their bhajan at these places. So Raghunath Das Goswami, he is paying his obeisances to all the Vaishnavas and to all these places. So, at present, by our mind we should try to reside in these places with this keen desire that finally we will come there, we will go there and do our bhajan. If we will come to these places, then pastime will manifest in our heart. This is the potency of this place. So the Gurudev is again emphasizing the place Nandgram where Srila Rupa Goswami, Srila Narasanathan Goswami, they were doing their bhajan. And Gopal Bhatt Goswami also, he came and he situated himself to a nearby place at Sanket. Therefore, if we want that Krishna pastime should manifest in our heart, we have to come to this place as host. This host is called Rajit or Gokul. Then comes Parikar. All those Brijvasis, who are Brijvasis? Till Gurudev is explaining. Those who are associates of Radha Krishna, they are Brijvasis. Everyone who is living in Braj is not Brijvasi. Those who are Rupa Nuga, they are Brijvasi. We have to give our life and soul to them. Full respect. Full love to them. To whom? To Brijvasis. Who are Rupa Nuga. Who are associates of Radha and Krishna. So all bhakta, bhakta matra, we have to give our respect. Who is bhakta? Srila Gurudev is explaining. Ananya bhav se jo bhakti karte. Who are one-pointed devotees? Those who have given up even a desire for Vaikuntha and liberation, they are true bhakta. We have to give our full respect to them. Those who have little material desire, are they bhakt? No. But to speak of material desire, those who don't even desire for mukti, those who do not desire even for awareness of Vaikuntha Dham, they are real bhakt. We have to give full respect to them. Ekantik bhakti Brajvasi hai. So such one-pointed devotees are called Brajvasi. How should we pay our respect? Giving up our dham, our vanity, proud. What is the proud? Pride. What is the pride? That I know. My knowledge is great. I know so many scriptures. Give up this thought. Just give up this pride. And then only we can respect to Brajvasis and Brajdham. That is why Srila Raghunath Das Goswami, he used to pay 1,000 obeisances to Brajvasis and to Brajdham. And Srila Gurudev is saying that this has started a tradition of Dandavati Parikrama. Sometimes we go in Govardhan and we see that so many people are doing Dandavati Parikrama with so many stones in with them. At one place, they are paying obeisances 1,800 times with those stones. And this type of tradition came from Sri Raghunath Das Goswami, who used to give every day 1,000 obeisances to Brijvasis and Brijdham. So, can we do our bhajan in this fashion? Very difficult. We are doing bhajan with so much opulence and facilities and comfort. They gave up to full comfort. It is not possible for us to do bhajan in that strong manner, giving up our all facilities. Srila Raghunath Das Goswami, he gave up eating everything, but just taking matha. Churned buttermilk and not in a good quantity, that also one leaves of that sauce. This was his strong bhajan. And
in this state, where my apple far away, somebody may have to follow.
जल्दी से बोलिए.
हरे कृष्णा. दूसरा माइक देना.
ऐसे बोल दीजिए.
अच्छा, मैं जोर से बोल रहा हूँ, सुनने की कोशिश. सो आर वी डूइंग भजन? मे बी भजनाभास एंड मे नॉट दैट ऑल्सो. चलो गुरुदेव, in this so much comfort, how much we are doing real bhajan? No, there no
question of bhajan. Even it is not bhajana bhag. But we should desire for it. Then it comes sujan. Who are sujan? Those who are living in braj but not in the mood of brajvasi. They belong to different sampradayas.
In a brief poli, jaldi.
And also so many sampradaya lines. They are Bhusargan. But Sri Gurudev is explaining, they are not a vertebral of other demigods. They are Krishna devotee, but they are not one-pointed and not so much strong devotee. We have to give our respect to them. They are Kanishk Bhagavat. It is not mentioned as Vaishnava also. Sri Gurudev thinks they are called as Kanishk Bhagavat. So,
Oh, it has been given. Rup Sanatan or Mahabhagavat and Sujan Madhyam Bhagavat
and Bhusur Kanishtha Bhagavat.
Kanishtha Bhagavat.
Sanjaka Bhagavat.
Bhagavat, not Vaishnava. Because all are bhakta. But Nanda Baba and his associates all are Mahabhagavat. Rupa Goswami, Raghunath Goswami, Sanatana Goswami, all are Mahabhagavat. And for Nimbark Ramanuj, they have been told Madhyam Bhagavat. They are Bhagavat. Why not? Because they don't accept Unnatu Jalparkiya Bhav. And third, more lower, Sujan, Bhusur, Brahmin. Why Brahmin? They are Bhajan Parayan, but not Ekantik. They don't know what is Unnatu Jalparkiya Bhav or Bhajan like Ramanuj, Madhvacharya, Vaishnava, like that. But well, they are Brahmin and they follow Vaishnava, Varnashram Dharma. But they should be given respect.
But they don't do the puja of Devata.
Huh?
They don't do puja of Devadevi.
They may do. They do also. Krishna also. They may see that Gopishwar Mahadev, Krishna are same. Udhar ke jo bhajan karche jao kauke samman dite hue. Mahabhagavater matun samman diya jabe na. Anshik samman dibe.
In case of Brahman, we should not disrespect them. Even Brahmans are chastising us or sometimes quoting us. So Gurudev is quoting from Srimad Bhagavatam. We should not consider them that they are doing any chastising to us, we should disrespect them. We should bear their chastisation.
But and they were Atri, Durvasa, Narad, all like these.
These Brahmans are of the categories to Gurudev has explained, like Durvasa Rishi, Atri Rishi, Angira Rishi, etc. Narad Ji. We should not misbehave.
There are so many Brahmins in Braja. They don't keep tilak, no bhajan, doing business here and there. We should not respect them. But as a person, we can give honor in this way.
Then comes our own mantra,
Swamantra.
We should not do chant this mantra in a neutral mood. Oh, we are chanting Harinam. It is so great. This mantra is not so much powerful. No, we should have full faith in it and full enthusiasm for this mantra. This, because this mantra gives us a relationship. Gopal mantra. He takes us up to Golok Vrindavan. What about Kam Gayatri? What is Kam Gayatri? It is Krishna's subgroup. And Krishna is worshipped by this mantra. It is already explained in Chaitanya Charitamrita.
चित्त को चंचल करके मत भजन मंत्र जप करो, चित्त को स्थिर रखो। अभी जाना है, अभी जाना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, मन चंचल है, जल्दी से कर दिया, ऐसा नहीं। मन को स्थिर करके प्रीति के सहित में भजन करो, वो मंत्रों का स्मरण करो। हाँ, तो वैसे ही मंत्र कर बैठते थे तो समाहित हो करके करते थे, ऐसे चंचल चित्त नहीं।
So, but by chanting our mantra, we should be very much fixed up, not by flickering minded. Or, I have to do this, I have to do this, let me finish my mantra quickly. So, restlessly chanting mantra will not give any effect. And then comes Harinam, this Hare Krishna Mahamantra, we should chant very, very dedicatedly. At least we should chant 1,64 rounds. And when he's engaged in some services, then he may reduce some number of chanting. Because such high class of service is also a sort of harinam. Seva. Therefore, seva is very essential, Srila Gurudev is explaining. If we are not rendering our service, we cannot cultivate even Sukriti. And without Sukriti, we cannot advance in Krishna consciousness. But what is which mood we should chant? Radhika Dasi Jati Hai Abhiman. We should have this mood that we are servitor of Srimati Radharani. Then we should chant by giving up our all hypocritic mood. Kapatta. What is kapatta? Having any material desire. This will create, this will make our mind, our heart hypocrite. This will make our mind insincere. Therefore, sincerity comes when we throw away all our material desires. This will lead to a kantik bhav, one-pointed mood. And then rati will come. The name of this rati Gurudev is apurva rati. What is apurva rati? This love in our heart, it will come when our all unwanted desires go away. This situation has to be attained. Any Krishna Vaishnava, he cannot have such type of mood and feeling. So we have to first give up our all unwanted desire. So this rati is very top, high class of thing. It starts from Shraddha and goes to Nishtha, then Ruchi, Asakti, and then this Rati comes. This Rati comes in that true constitutional position. Unless one attains the true constitutional position, this Rati does not come. Therefore, if we want to attain that constitutional position and that Rati, we have to follow all these rules which has been narrated here. We have to take shelter of Asmi Rati. We should not take shelter of our faith. Oh, if we will be having in our luck, then we will be doing it. Otherwise we should wait for. No, for this, we should endeavor hard.
But
as much as we will do bhajan, that will increase our internal potency. That will give us potency.
बस एक प्रश्न किया दीक्षा गुरु से, शिक्षा गुरु का वैशिष्ट्य क्यों है? दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु बराबर ही हैं, समझ जाती हैं, किंतु दीक्षा गुरु पिता के रूप में है, उसके प्रति गौरव भाव होता है, और शिक्षा गुरु जो होता है वो बंधु मित्र की भांति होता है, उससे सब कुछ कर सकते हैं और सब सुन सकते हैं, इसलिए शिक्षा गुरु का वैशिष्ट है। दीक्षा गुरु से शिक्षा गुरु मिल जाए तब शिक्षा गुरु से शिक्षा मिल जाए तब दीक्षा गुरु की आवश्यकता क्या है? संबंध ज्ञान गुरु देगा और शिक्षा गुरु भी दे सकता है तो फिर शिक्षा गुरु नहीं दीक्षा गुरु ही हो गया। यदि शिक्षा और दीक्षा दोनों ही दिया तो दीक्षा ही गुरु हो गई तो कोई बात ही नहीं है। और यदि दीक्षा गुरु अधिक बातचीत नहीं उनको समय नहीं है इधर उधर रहते हैं और भी लोगों को देना है जरा समय कमी है तो वो शिक्षा देंगे। और कहीं कहीं गुरु जी की सेवा से ही उनकी शिक्षा भी होती है इधर शिक्षा और दीक्षा गुरु दोनों ही हो जाते हैं। गौर प्रेमानंदे व्हाट अरे वो तो हो गया क्या बोल
If it is that sometimes Diksha Guru is superior to Diksha Guru, why? The Guru Devi is explaining. Diksha Guru is like father. We have to
Aswarya Mood. Sab Aswarya Mood or honor to him.
Honor to him. So we have that Aswarya Mood for him. And Diksha Guru is friendly with us. He is Bandhu. We can go more deep for and we can reveal our heart to him. Therefore sometimes Diksha Guru is
Diksha Guru like soulmate.
Therefore, it is said sometimes Shiksha Guru is superior. And it may be possible that if Diksha Guru and Shiksha Guru may be the same also. Bhakti Premanande.
Anything?
This morning, the Holy Sushi's initiation, we will now pronounce your new name. Receiving Diksha initiation, Ridhai Govinda Prabhu.
Oh, Hriday Govind Prabhu ki jai. Very good name.
Receiving Harinam and Diksha at the same time this morning, Margo. Please stand up, Margo.
Madhu Dasi.
Madhu Dasi. Madhu.
Receiving Diksha, Latika Devi Dasi from Russia.
Olashka Dasi. Ki jai. Okay.
Latika.
Haan, Lashika. Latika. Haan, ta Latika Devi ki jai.
Receiving Harina, the son of Latika, Devi Dasina Gurudev's son, Sandro.
Chandro.
Sadananda.
Sadananda. Sadananda Prabhu.
Haribo.
Sadananda.
Receiving Harina and Diksha at the time from Ukraine, Irena. Stand up.
Indumati.
Indumati Dasi ki jai.
Receiving Diksha from France, Surati Dasi. Please stand up.
Tulsi Dasi ki
jai. Surati. Surati.
Surati. Surati Dasi ki jai.
Receiving Harinam, already she had named before Prem Prayojana and she would like to see the day.
Prem Prayojana. Dasi ki jai.
Receiving Harinam, Damir Jadav.
Uchachi.
Japan.
What name?
Before?
What name?
This name is Brajaraj.
Brajaraj.
New.
Who is Brajaraj? Brajaraj Prabhu ki jai.
And then Receiving Harinam Babi Sasa, also from Germany.
What?
Sunanda.
Sunanda Devi ki jai.
Sunanda Das.
Sunanda Das. Very good. Sunanda Das.
Receiving Harinam from Bolivia, Pablo.
Priyanath Das.
Priyanath Das.
Receiving Diksha from Norway,
Haridasi.
Haridasi. Haridasi Devi ki jai.
Another Haridasi. Receiving Diksha from Hong Kong, Chandrakala Dasi.
Chandrakala Dasi ki jai.
Receiving Harinam from, Karnataka State. Okay, Harinam and Diksha, Hanumanta Rai Prabhu.
Hanuman.
Oh. Hanumant Das Prabhu ki jai.
Hanuman.
Let them.
Also from Karnataka Maharashtra, receiving Diksha Narendra Prabhu.
Narendra Prabhu ki jai.
Receiving Harinam from Germany, Rita Shirogar.
Rita Dasi.
Rita Dasi ki jai.
Receiving Harinam, first titles are now officially from New Jersey, USA, Rajiv Pandey.
Ramesh.
Ramesh Prabhu ki jai. Ramesh na Radhesh.
Ramesh.
Ramesh Prabhu ki jai. Rajiv Lochan is also a good name.
Achha.
So,
Ramesh.
Ramesh Prabhu ki jai.
Also receiving Harinam, Radha Pandey, his wife.
Rama Devi ki jai. Rama Devi.
From Wales, receiving, it is not clear, is Malini Diksha.
Malini Dasi.
Nalini Dasi ki.
Malini.
Malini Dasi ki jai. Okay.
Then one short announcement. The devotees who have just arrived yesterday, before yesterday, had no time to register yet. Also, those who have arrived today, please register yourself either with myself or with Shripad Balakwaras, Indian devotees, or with Vrinda Devi Dasi or Tungan Vijaya Devi Dasi. And tonight, I would like to request Dr. Alankar to stand up. Dr. Alankar is here. Dr. Krishna Alankar.
He is a very good doctor, qualified.
For 30 years he has been practicing any
heart rogue even.
Anything he can cure.
He is expert in all.
Of course, Gurudev is the most expert, but if we have any difficulty with our body, we can. After Aarti, Dr. Alankar, Krishna Alankar Prabhu will be sitting here and also
Aarti will be also. She is very qualified also.
Prema Mai Devi Dasi will also be sitting here.
Oh, Harina.